నమో విహంతానం, నమో సిద్ధానం, నమో ఆర్యానం, నమో ఉజ్జానం, నమో లోయే త్రికాళవర్తి సర్వసాధన మంగళం భగవాన్ వీర మంగళం గౌతమోగణి మంగళం కుందకుందారి జైన్ ధర్మస్థు మంగళం సర్వ మంగళ్య మాంగళ్యం సర్వ కళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణం జైనం జయతి సాధన ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినం కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః. నమ సమైతారాయ స్వానుభూత్య చకాస్తే చిత్స్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతర్థితే అజ్ఞానికి విరాంధానాం జ్ఞానార్జన శలాకయ చక్షురుమ్మిలితం యేనం తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఆత్మా జ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాధన్య సరోతికి పరభావస్య కర్తాత్మా మోహోయం వ్యవహార్య మంగళమయ మంగళకరం వీతరాగ విజ్ఞాన నమూతా హి జాతే భయే హరిహంతాది మహాన్ ఓం నమః సిదేవ్య నమః సిదేవ్య నమస్తే. पूज्य बाबूजी द्वारा निर्मित तत्वज्ञान एक अनूठी जीवन कला के लेख के संदर्भ में एक बात विचारणीय है कि तत्वज्ञान तक पहुंचने का जो विधान है वो अत्यंत सरल है. जीव एक बार यदि इस तत्वज्ञान को प्रयोगशाला बनावे तो शुद्धात्मा तक पहुंचना सरल है. और उसका विधान यहाँ पे बताते हुए बाबूजी कहते हैं कि अनंत महिमावंत वक्ष होने पर भी आत्मा को सदा से ही अपने गौरव की प्रतीति एवं बोध नहीं है. वस्तु अनंत महिमावंत है, अनंत शक्ति का पुंज है, अनंत शांति का निधान है, परम वितराग है, सबसे अलग थलग है, संपूर्ण चैतन्य सत्ता है. और ऐसी महिमावंत वस्तु होने पर भी आत्मा को सदा से ही अपने गौरव की प्रतीति एवं बोध नहीं है, वरन अनादेशी ही वह देह और देह के परिसर अगणित जड़ कंधों में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता रहा है. शरीर को अपना माना, शरीर और आत्मा की भिन्नता समझ में आई तो कर्मों को अपना माना, कर्मों से भिन्नता समझ में आई तो राधा की भाव को जीव का परिणाम माना. और उनकी भिन्नता यदि समझ में आ गई कि अपना स्वभाव नहीं है, उसका अभाव हो जाता है तो एक समय की पर्याय में अपनत्व करता हुआ अनादि काल से जिस तरह से दुखी होता है तो कहते कि वो जड़ कंधों में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करता रहा है. वस्तु व्यवस्था के आलोक में जब आत्मा की प्रवृत्ति की मीमांसा की जाती है तो वो अपराधी सिद्ध होती है. अन्य पदार्थ से अपनापन कुदरत को बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि उसके अंदर में उनकी सत्ता को हड़पने का प्रयत्न है, दूसरे पदार्थ की सत्ता को निगलने का, अपनापन करने, उसमें एकत्व करने का मतलब है उसमें अपना मानना, उसको अपना मानना. जब पर पदार्थ को अपना मानने का वो दूर साहस करता तो कुदरत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस पदार्थ का अस्तित्व के सामने उसको तकलीफ है. पर वो पर पदार्थ के अस्तित्व को जो अपना करता है उसका पर निगोद के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि इच्छे द्रव्यों की सत्ता के सामने उसने चैलेंज किया है. उसके अस्तित्व के सामने, उसके सत्पने के सामने, उनकी व्यवस्था के सामने उसने उसको स्वीकार नहीं करते हुए, अपनापन करते हुए उसको निगलने का प्रयत्न किया है दूसरे पदार्थ की सत्ता को, जो कभी भी चरितार्थ नहीं हो सकती. और उसका फल ही आता है कि व्यवस्था की चारा में तड़पता ही होता है. लेख गजब का है, एक एक शब्द बहुत मूल्यवान है, लेकिन यदि अपन एक एक शब्द का अर्थ करें तो शायद 1200 अध्याय में एक लेख भी पुराना हो सके। तो अपन मूल मूल भाग जो है उनके लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आत्मा की अनंत कष्टावलियों के संबंध में तत्व ज्ञान का यह त्रैकालिक निदान है और तत्व ज्ञान उनके सार्वभौमिक और सार्वकालिक परिहार का पथ भी निर्दिष्ट करता है। तत्व ज्ञान ऐसा है कि वो निदान भी करता है कि अनादिकाल से संसार में रुलने का कारण क्या है, उसका निदान करके सार्वभौमिक और सर्वकाल उन्हें सदा के लिए उसकी जो तकलीफ है, उनका जो हार कैसे हो, संसार का अभाव कैसे हो, उसका पथ निर्दिष्ट करता है। यह कहता है कि सुख और शांति आत्मा का स्वरूप ही है। अब जो आत्मा का स्वरूप है वो आत्मा के बाहर पाया कैसे है? सुख और शांति आत्मा का स्वरूप है, आत्मा में से उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है, उसको बाहर खोजने से मिलता नहीं है। अतः किसी अन्य पदार्थ एवं इंद्रिय भोगों को उसका साधन मानकर संग्रह की चेष्टा करना मूर्खतापूर्ण अपराध है। इस विश्वास के कारण आत्मवृत्ति एक अनाचारी पुरुष की तरह सदैव पर सत्ताओं में परिभ्रमणशील रहती है। अतः अपनी चैतन्य वाटिका की महिमा में अविराम चिंतन द्वारा, अब उसका उपाय क्या है वहाँ से परिभ्रमणशील जो रहती है उसका उपाय क्या वहाँ से, क्योंकि अपनी चैतन्य वाटिका की महिमा में करना क्या होगा, अपनी जो चैतन्य वाटिका है, चैतन्य का बाग जो है, उसकी महिमा में अविराम चिंतन द्वारा। ये भगवान आत्मा उनके अभिप्राय में एक समय के लिए भी छूटना नहीं चाहिए, निरंतरता पूर्वक, प्रतीति पूर्वक, चाहे विकल्पों के अंदर में भले न चले, लेकिन परिणति के अंदर में मैं परमात्मा हूँ ये बात एक समय के लिए भी न छूटे। वो एकमात्र उपाय है जो भ्रमण से चैतन्य वृत्तिया को आत्मस्थ करके, जो चैतन्य की वृत्तिया पर्याय जो पर पदार्थ के अंदर में घूमती रही, आराम करती रही, वहां से उसको वापस लाकर चैतन्य वृत्तियों को आत्मस्थ करके स्वरूप सौंदर्य का संवेदन करना ही मुक्ति का एक मार्ग है, दूसरा नहीं। पर पदार्थ में से वृत्तियों को वापस लाकर चैतन्य वाटिका के अंदर में आत्मस्थ करके अविराम चिंतन द्वारा स्वरूप सौंदर्य का स्व संवेदन करना एकमात्र उपाय है। अब ये होगा कैसे? ये जो बात तो कही गई वही पर्वतात्मा से अपनी वृत्ति को वापस ले ले और चैतन्य बाग के अंदर में, चैतन्य वाटिका के अंदर में उसको आत्मस्थ कर दे, लेकिन ये हो कैसे सकता है? उसके संबंध में बाबू जी कहते हैं कि तत्वदृष्टा का देह और उसके परिकर अगणित इंद्रिय विषयों का सानिध्य भी रहता है। जो तत्वदृष्टा है उसको क्या है, देह का संयोग भी है और देह संबंधी अगणित इंद्रिय विषयों का सानिध्य भी रहता है। इनका कभी मानवांचित परिणाम होता भी है और कभी परम प्रतिकूल भी होता है, किंतु परस्तो बोध के बल से जिसको अपने भगवान आत्मा को देख लिया, अब उसका जो बल है उस बल से वह इन सभी परिस्थितियों से अप्रभावित रह लेता है। और इसके आगे कहते हैं, इसी प्रकार अज्ञान के निमित्त से देह की बात की अभी और आगे बात करते हैं कर्म की। अज्ञान के निमित्त से आत्मा के साथ संलिप्त कर्म बंधनों के प्रति भी तत्वज्ञान अत्यंत मध्यस्थ हो जाता है, क्योंकि जैसे एक समझदार अपराधी इस सत्य को असंदिग्ध भाव से जानता है कि उनके बंधन उसके पूर्वकृत अपराधों के प्रतिफल मात्र है किंतु अपराधों के कारण नहीं है। एक अपराधी को यदि उस अपराध की सजा दी जाए तो जानते हैं कि उसने जो भी परिणाम किए थे, पूर्व उसके जो अपराध जो किए थे उसका एक प्रतिफल है, अपराध का कारण नहीं है। इसी प्रकार तत्वज्ञान की यह अत्यंत निशंक और स्पष्ट मान्यता है कि कर्म बंधनों का उसकी अशुद्धतम संसार दशा, कर्म बंधनों का उसकी अशुद्धतम संसार दशा और शुद्धतम मोक्ष दशा के प्रति किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। कर्मबंध के कारण अशुद्धतम संसार दशा और कर्म की मुक्ति के कारण मोक्ष दशा, दोनों के प्रति उसका कोई कर्तृत्व नहीं है। स्वभाव का दर्शन वो है सम्यक दर्शन, और स्वभाव का अदर्शन उसका नाम है नित्य दर्शन। इसमें कर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कर्म की वार्ता के कर्म के कारण जीव सुखी दुखी होता है, कहने समझाने वाली संयोग का ज्ञान कराने वाली बातें हैं। वास्तविकता से देखा जाए तो स्वभाव में रह जाना ही मोक्ष है, और स्वभाव की तरफ नहीं झांकना ही संसार है। ये बात अत्यंत स्पष्ट हो जानी चाहिए। जैसे शरीर का कोई भी आदान प्रदान आत्मा के साथ में नहीं है, ऐसे कर्म की कोई भी परिस्थिति अशुद्धतम संसार दशा या शुद्धतम मोक्ष दशा के प्रति किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। दिल दिमाग से निकाल दे के बाहर की जो प्रतिकूलता है वो कर्मों के उदय के कारण है, और अनुकूलता है वो भी कर्मों के उदय के कारण है। कुछ आदान प्रदान कर्मों के साथ में होता ही नहीं है, क्योंकि पर्याय की व्यवस्था ऐसी है कि जिस समय जो पर्याय जिस तरफ झुकती हुई उत्पन्न होती है उसी समय दुखी या सुखी वो होती। पर के एकत्व में दुखी और स्व के एकत्व में सुखी उसी क्षण होती है। पर्याय के अंदर में भी उत्तर पर्याय और पूर्व पर्याय के साथ में कोई आदान प्रदान की व्यवस्था जब नहीं हो तो चेतन के परिणाम के लिए स्थिति हो तो जड़ कर्म बिल्कुल सही में जड़ बिल्कुल सर्वता भिन्न द्रव्य क्षेत्र काल भाव से द्रव्य गुण भाव से हर तरह से जिसकी भिन्नता है उसका कोई भी हस्तक्षेप कि कर्मों की कारण दुखी या कर्मों की मुक्ति का नाम मोक्ष ऐसा नहीं है। इससे आगे कहते हैं तत्वज्ञान तत्वदर्शी की प्रयोगशाला है। वह आत्मा से संयुक्त विजातीय परतों का एक्सरे की रश्मियों की तरह तब तक भेदन करता जाता है जब तक उसे आनंद निधान चैतन्य के दर्शन नहीं होते। जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन के अंदर में जो रेज निकलता है तो तब तक भीतर जाता है जब तक उसको जो चाहिए वो मिल न जाए। तो ये जो तत्व ज्ञान के जो तत्वदर्शी होता है वो स्वरूप के अंदर में भेद ज्ञान करता हुआ तब तक जाता है जहाँ पे उसको आत्मा की अनुभूति जब तक नहीं हो। उसका विधान क्या है? तो विधान कहते हैं काया और कर्म की माया में तो उसके चरण अवरुद्ध होते ही नहीं है। काया और कर्म की माया, काया माने शरीर नौ कर्म और कर्म की माया माने द्रव्य कर्म, उसके चरण अवरुद्ध होते ही नहीं है क्योंकि उनमें तो उसे चैतन्य का आभास भी नहीं होता। अब जिसमें चैतन्य का आभास ही नहीं हो वो कर्म के कारण और सुखी दुखी एक कल्पना आत्मा के दिल दिमाग से निकल जानी चाहिए, क्योंकि इनमें तो उसे चैतन्य का आभास भी नहीं होता। किंतु राग द्वेष एवं पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियां, राग द्वेष एवं पुण्य पाप जैसी आत्मवृत्तियों में भी उसे चैतन्य का चिन्ह नहीं मिलता। चैतन्य का कोई स्वरूप नहीं, चैतन्य का ऐसा कोई गुण नहीं कि राग द्वेष हो पुण्य पाप हो, क्योंकि पर के प्रति आकर्षण होने से वे अत्यंत विकृत है अतः उपाधेय नहीं है। फिर मलेरिया का उदाहरण दिया कि यदि मलेरिया मच्छर काट दिया और किसी को मलेरिया हो गया तो बुखार तो हुआ है उन शरीर के अंदर में, लेकिन वो उनका स्वभाव नहीं है। और कोई शक्तिवान हो तो मलेरिया का मच्छर काटने के बावजूद भी उससे ज्वर नहीं होता। उसी तरह से तत्व ज्ञान का सूक्ष्म अनुसंधान यह है कि उसका मंतव्य है कि भिन्न लक्षण वाले अनेक भाव एक साथ तो रह सकते हैं पर कभी भी एक नहीं होते। फिर दही का उदाहरण दिया कि दिल दही के एक एक कण के अंदर में घी बनने मक्खन बनने की विद्यमानता रहती है, लेकिन जिसको इसके बारे में पता नहीं है वो मक्खन को प्रतीति नहीं होने से उसके बारे में कुछ जान नहीं सकता। उसे इसी तरह से तत्व यदि पाप पुण्य के विकार पुंज में भी विकार से अत्यंत भिन्न चैतन्य की अव्याहत प्रतीति में गतिमान रहता है। ये बात प्रतीति की है। जब तक प्रतीति नहीं होती, विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, तब तक चैतन्य की जो गंभीरता जो है, चैतन्य की उन्नत जो है, वहां तक वो पहुंच नहीं पाता। देखिए, शरीर की बात ली, कर्म की माया की बात ली, फिर उसके आगे चल के राग द्वेष पुण्य पाप के परिणाम की बात ली, उससे आगे चल के तत्वज्ञान की शोध यही विराम नहीं ले लेती। मैं नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्नता बतला कर कहते हैं, तत्वज्ञान की शोध यहाँ विराम नहीं ले लेती, किंतु पुण्य पाप के आवरण से आगे। अब पुण्य पाप से आत्मा भिन्न है, उतना सोचने से काम बनने वाला नहीं, उसके आगे भी कुछ है। क्या है? क्योंकि पुण्य पाप के आवरण से आगे वह चैतन्य की खोज में और गहरी उतरती है, और उसे चैतन्य जगत में ही, अभी तक जो कुछ भी था वह चैतन्य जगत के बाहर था, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नव कर्म, वो जड़ जगत था, उसके अंदर में उसने अपनापन किया, उसलिए दुखी हुआ। अब उसकी भिन्नता समझ ली, मुमुक्षु को समझता के इसकी गाथा अच्छी तरह से समझ में आती है। द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय को जड़ समझते हैं, उसके आगे कहाँ रुकते हैं, तो वो बात बाबू जी कहते हैं कि चैतन्य की खोज में और गहरी उतरती है, और उसे चैतन्य जगत में ही, चैतन्य की दुनिया में, चैतन्य के विस्मयों में ही कणिकाओं का एक अत्यंत सुंदर तत्व दिखाई देता है। कणिका का एक सुंदर तत्व माने पर्याय का एक सुंदर तत्व दिखाई देता है, जो अत्यंत सुंदर होने पर भी, वो सुंदर तो है पर्याय, क्योंकि वो आत्मा की पर्याय है, द्रव्य की पर्याय है, तो एक तत्व सुंदर तो है, लेकिन इसलिए रमणीय नहीं लगता कि सागर की तरंग के सदस्य वह सदा उपलब्ध रह सकने योग्य नहीं है। सागर के तरंग जो होते हैं वो सदा उपलब्ध होने योग्य नहीं है, वो आते और बिखरते, आते और बिखरते हैं। इसी तरह से पर्याय उत्पाद होती है, जय होती है, उत्पाद होती है, जय होती है, उसलिए वह रमणीय नहीं लगती है। सागर तो सदा उपलब्ध है, अतः कणिका का ममत्व भी, पर्याय का ममत्व भी एक मधुर उन्माद है, जिससे में निरंतर विकलता का ही स्राव होता है। विकलता माने अस्थिरता का ही स्राव होता है। बात ऐसी है कि पर्याय प्रतिशल उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे होता, तो उसके अंदर में स्थिरता कैसे होगा? स्वयं अस्थिर है, स्वयं सनित है, स्वयं अनित्य है। बाबू जी एक दृष्टांत दिया करते थे, एक बालक को दत्तक लेना था। अभी एक बालक बहुत सुंदर था, लेकिन उसका आयु एक दिन का, और एक दूसरा बालक है उसका आयु लंबा था, किसको दत्तक ले? एक समय का बहुत सुंदर है, बहुत दिखने में अच्छा है, खेल रहा है, लेकिन आयु उसका एक समय का, क्या करे? पर्याय का आयु एक समय का, फिर वो पर्याय निगोद की है कि वक्त की, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। निगोद की पर्याय तो त्याग नहीं योग्य, और मोक्ष की पर्याय प्रकट करने योग्य ऐसा नहीं है। दोनों ही पर्याय को पर्याय होती है, ये जब तक उसको समझ में नहीं आता तब तक अस्थिरता के अंदर में, पर्याय की संख्या के अंदर में, अनिश्चितता के अंदर में उसको अपनापन, उसकी सुंदरता उसको सुहाई। लेकिन एक बाबू जी के ही शब्द कि मैं वो केवल ज्ञान की चट्टान हूँ, मैं भगवान आत्मा की चट्टान, लोखंडी चट्टान हूँ, कि जिसके पांव को चूम चूम के अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकलती है, फिर भी जिसका एक कण भी कम न हो, ऐसा ज्ञान तत्व मैं हूँ, इसकी महिमा जिसको नहीं आती उसको मोक्ष की महिमा आती। अब जिसको मोक्ष की महिमा आई, उसको संहिता के प्रति प्रेम है, और फिर एक समय की पर्याय मोक्ष की भले क्यों न हो, निगोद और मोक्ष में किसी को अंतर नहीं दिखता, संसार और चित्त में जिसको अंतर नहीं दिखता उसको पर्याय के तत्व छूटता है। पर्याय की अस्थिरता समझ के, पर्याय की समीपता समझ के, पर्याय की अनिश्चितता समझ के, वो पर्याय में से दृष्टि हटा देता है। ये तो पर्याय की सम्यक दर्शन जिसे चाहिए उसको सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन चाहिए माने मिथ्या दर्शन रहे, मोक्ष चाहिए माने मिथ्या दर्शन रहे। ये बात उसको समझ में आनी चाहिए कि जो आश्रम और बंध का क्षेत्र है वही आश्रम बंध का अभाव के समर और निद्रा का जन्म हो। तो ये आश्रम का क्षेत्र पर है तो समर का क्षेत्र अपना नहीं हो सकता। आश्रो भी पर चित्र और संवर निगरा मुख भी पर चित्र, और जब तक पर चित्र नहीं दिखता तब तक उसमें अपनापन नहीं छूटता। आत्मा असंख्यात प्रदेशी नहीं है, आत्मा एक प्रदेशी है। वो एक प्रदेशी आत्मा का स्वप्रदेश है, अखंड एक प्रदेशी जो है वो तो उसका स्वप्रदेश है, और पर्याय का जो क्षेत्र है वो पर प्रदेश है। बाबू जी कहते हैं कि विकलता का ही श्राव होता है, इससे अनंत चैतन्य का कबाट खुलता है और तत्व ज्ञान को उसके असंख्य प्रदेश की सन्निवेश में, सन्निवेश माने क्षेत्र में अनंत शक्तियों का मंगल लोग दिखाई देता है। पर्याय से एकत्व छूटा, पर्याय की अस्थिरता समझ में आई, आश्रव या मोक्ष के अंदर में कोई अंतर नहीं दिखा, विकल्प और निर्विकल्प में कोई अंतर नहीं दिखा, बंध और मोक्ष में कोई अंतर नहीं दिखा, तब पर्याय का अपना बन गया। और आगे बढ़ा तो अपने क्षेत्र के अंदर में अनंत शक्तियों का मंगल लोक दिखाई देता है। ज्ञान दर्शन चरित्र सुख वीर्य प्रभुत्व ऐसे अनंत अनंत शक्तियों का मंगल लोक दिखाई देता है, जैसे चित्र विचित्र पुष्पों की वाटिका की हो। तो बाग में आया है तो बाग के अंदर में तो चित्र विचित्र पुष्पों की वाटिका की हो, किंतु तत्व ज्ञान यहाँ काफी सूक्ष्म एवं गंभीर हो जाता है। जहाँ अनंत गुणों के समीप गया वहाँ तत्व ज्ञान काफी सूक्ष्म उपयोग बहुत सूक्ष्म हो जाता है एवं गंभीर हो जाता है, क्योंकि चैतन्य की अनुभूति का यह अंतिम व्यवधान है। यह देखता है कि अनंत के दर्शन में भी अनुभूति की तरलता समाप्त नहीं होती। तरलता माने चंचलता, अनंत के दर्शन में चंचलता समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये भी भेद वृत्तियां हैं और गुण भेद को पर्याय भेद भी कहा जाता है। वरन अनंत शक्ति की इस चक्रियता में भी, अनंत शक्ति की इस चक्रियता में भी, चक्रियता माने भेद वृत्ति, सुहाती सुहाती सी मंद मंद विकलता ही निष्पन्न होती है। विकलता माने विकल्प ही निष्पन्न होता है, अनंत गुण के दृष्टि से विकल्प ही निष्पन्न होता है, निर्विकल्पता नहीं होता। तब क्या होता है, जिसका भेद सजग प्रज्ञ को ही प्रतिभाषित होता है, सजग आत्मा को, सजग ज्ञान को इसका भेद प्रतिभाषित होता है। अरे ज्ञान दर्शन चरित्र ये तो गुण भेद है, वो गुण भेद तो वस्तु में होते नहीं है। तो क्या होता है, अतः इस शक्ति सम्मोहन से भी अपराजित, शक्ति सम्मोहन से भी अपराजित एवं अकृत तत्व ज्ञान अपने पुरुषार्थ के अंतिम चरण में तूफानी त्वरा से परिणमित होता है। इसलिए शरीर कर्मों भावकर्म पर्याय गुणभेद और इसके अंदर में भी जब विकल्प ही विकल्प निष्पन्न होते हैं तो एक उसका सजग ज्ञान, उसका जागृत ज्ञान वहाँ एक शक्ति के समूह में अपराजित रहता है, शक्ति के हृदय में समूहित होकर रुक नहीं जाता, अटक नहीं जाता, उससे भी आगे मैं तो अवैध वस्तु हूँ और तूफान भी दौरा चलता अंतरंग के अंदर में, तब वो अनुमान ज्ञान में आता है। अभी अनुमान ज्ञान क्या है? जिसका ज्ञान सजग है, जो गुण भेद में नहीं अटकता, पर्याय भेद में नहीं अटकता, और जब उसका ज्ञान जब स्वभाव की तरफ दौड़ता है तो उसकी ये अनुभूति की पहले की जो समय है, अनुभूति के पहले का जो अवसर है, उसकी स्थिति ऐसी होती है जिससे ज्ञानी की अनुभूति के पश्चात, एक ज्ञानी पुरुष अनुभूति के पश्चात विकल्प में आओ तो उसे आत्मा का जो ख्याल आता है, जैसा आत्मा उसका अनुमान ज्ञान में आता है, आत्मा की को अनुभूति के पहले अनुमान ज्ञान में आत्मा रहता दिखाई देता है, क्योंकि वो सजग ज्ञान है जो गुण भेद में भी रुका नहीं है, वो गुण भेद के सम्मोहन से अपराजित रहा है। और इसको आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने एक ऐसी स्थिति बतलाई है कि इसको हम निर्विकल्प वत कहते हैं, स्विकल्प स्वर संवेदन कहते हैं, निर्विकल्प वत कहते हैं, सुगान जी के शब्दों में पक्का निर्णय कहते हैं, बेलसी धन के शब्दों में लक्ष्य कहते हैं। आत्मा की अनुभूति के पहले जैसा आत्मा है वैसा आत्मा उसके लक्ष्य में आ जाता है, अनुमान ज्ञान में आ जाता है। फिर अंतर क्या? अनुभवी को अनुभव के पश्चात विकल्प में जैसा आत्मा भाषित होता है वैसा आत्मा अनुभूति के पहले ख्याल में आ गया, तो दोनों में अंतर क्या? तो क्या अंतर है? एक को आनंद का वेदन है, एक को आनंद का वेदन नहीं है। लेकिन जैसा का तैसा आत्मा उसका अनुमान ज्ञान में आ जाता है। और बेंसरीगंज इसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से करती है कि उसके अंदर में आत्मा हाथ में आता है और फिर लपकता है, आते लपकता है और जहाँ जोर से पकड़ लेता है अनुभूति हो जाती है। वो कहते हैं और उससे अत्यंत अपने पुरुषार्थ के अंतिम चरण में तूफानी स्वरा से परिणमित होता है और उसे अत्यंत निस्तरंग अटल चैतन्य का वह दिव्य लोक दिखाई देता है। अत्यंत निस्तरंग, निष्कम, अचल, निश्चल, अटल चैतन्य, ध्रुव चैतन्य का वह दिव्य लोक दिखाई देता है जहाँ अनंत ही शक्तियाँ एकत्व में एकीभूत है। अनंत शक्तियाँ एकत्व में एकीभूत है, एक रूप है, अनंत शक्तियाँ एक रूप है, निष्कम, निश्चल, ध्रुव मात्र, ध्रुव मात्र, ध्रुव मात्र, वहाँ सर्व तरलताओं को विसर्जित करके, तरलताओं माने विकल्पों को विसर्जित करके अनुभूति ऐसी समाहित हो जाती है कि द्वेष ही दिखाई नहीं देता, द्रव्य और पर्याय ऐसा द्वेष दिखाई नहीं देता। कहा ऐसा जाता है कि प्रमाण ज्ञान के अंदर में द्रव्य पर्याय दोनों का ज्ञान होता है, वास्तविक का यह है कि द्वेष दिखाई ही नहीं देता। जो अनुभूति में आता है उसको आत्मा, अपने को अपना अनुभव होता है, आत्मा को आत्मा का अनुभव होता है, पर्याय को द्रव्य का अनुभव नहीं होता। जो अनुभूति के समय जो कुछ भी है वो आत्मा, भेद विकल्प नहीं है, भेद विकल्प नहीं होने से पर्याय और द्रव्य ऐसा विकल्प खड़ा नहीं होता, जो कुछ भी है वो आत्मा है। परिणामी, वो अपरिणामी भी नहीं रहा और परिणाम भी नहीं रहा, परिणामी रहा, फिर बार आते हैं अपरिणामी तो फिर परिणामी, मैं अपरिणामी तो फिर परिणामी। अनुभूति के अंदर में जो है तो आत्मा है, उसको स्वयंवाद कहो, उसको अनेकांत कहो, उसको अनुभूति कहो, जैन स्वातंत्र की अनुभूति कहो, सम्यक ज्ञान कहो, बाबू जी कहते कि आरत दर्शन का प्रसिद्ध ब्रह्मानंद है, प्रत्येक स्थिति को अद्भुत के स्व संवेदन के अंदर में जो प्रत्यक्ष हो जाता है वो तो जब अनुभूति से बाहर आता है तो आनंद था, आनंद चला गया तो कहा जाता है कि द्रव्य पर्याय दोनों पर्याय चली गई, द्रव्य मूर्खा ही रह गया। वास्तविकता यह है कि इसी स्थिति में भी पर्याय ने द्रव्य को छुआ नहीं और द्रव्य पर्याय में आया नहीं, लेकिन फिर भी अनुभूति में जो था तो आत्मा, ऐसी अद्भुत अलौकिक अनुभूति की स्थिति होती है। वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है, देखिए पूरा विधान बदला दिया बाबू जी ने, शरीर कर्म पाप पुण्य एक समय की पर्याय और गुण है, उससे जो अपराजित रहता है उससे हार नहीं जाता, स्वभाव का लक्ष्य करते हुए, अपरिणामी का लक्ष्य करते हुए, ध्रुव परमात्मा मात्र वस्तु में हूँ ऐसा लक्ष्य करते हुए जो अंदर आता है भेजता हुआ चला जाता है, उसको क्या होता है, द्वेष ही दिखाई नहीं देता, शुद्ध चैतन्य की यह आनंद वेदना ही, शुद्ध चैतन्य की यह आनंद वेदना ही आरत दर्शन का प्रसिद्ध ब्रह्मानंद है। इसी को आप पुण्य दर्शन कहो, मोक्ष मार्ग कहो, सम्यक एकांत क्रोध सम्यक अनेकांत का जीवन कहो, प्रमाण ज्ञान कहो, अनुभूति कहो, जो भी कहो, बस ये स्थिति है। लेकिन पहुंचता कौन है, जो पर्याय भेदों में और गुण भेदों में नहीं अटकता, इसी का नाम तत्व ज्ञान की सच्ची समझ है। तत्व ज्ञान जीवन एवं जगत की एक सर्वांग मीमांसा है, जीवन की एक भी समस्या ऐसी नहीं जिनका समाधान उसके पास न हो, यद्यपि अक्षय चेतन में ही उसका एकमात्र अहम है और वह निरंतर वही स्थापित रहता है, फिर भी सही के प्रति गतिमान अपने पर्याय दोषों का वह सजग प्रहरी है। जहाँ एक बार अनुभूति हुई तो अक्षय चैतन्य के एक जगह ही उसका अहम रहता है, ये प्रतीति रूप धारावाही स्थापित रहता है, लेकिन जो परिणाम सही हो गए गतिमान बदलते परिणाम है, उस पर्याय के अंदर में दोष भी है तो उसका वो सजग प्रहरी है, माने जागृत चौकीदार है, वो जानता है कि ये हमारी कमजोरी है, मजबूरी है, ये दोष उसको समझ में आता है। बाबू जी कहते हैं चारित्रिक दुर्बलियों से प्रवर्तमान कोई दोस्त उसे अपेक्षित नहीं है, अपने दोस्त को जानता है और मानता भी है, साथ ही वह निरंतर दोस्तों से खिन एवं विवल भी नहीं है। अब दोस्तों से खिन रहा कर अरे ऐसा दोस्त क्यों, ऐसा दोस्त क्यों, और विवल भी नहीं होता, क्यों नहीं होता, सतत उसका चिंतन से भी नहीं है, क्योंकि सर्वदोष निषेध की अद्भुत कला उसे विदित है, वो जानता है कि दोष का नाश कैसे होगा, दोष को याद करने से दोष का नाश नहीं होगा, अपने स्वभाव के पास करने से दोष चलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि विधान उसके पास में है, विधि उसके पास में है। कोई बाबू जी कहते हैं वह जानता है कि सतत दोष का विचार व निरंतर दोषों का भय दोष मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, उसका अत्यंत स्पष्ट निर्णय है कि आत्मा में सर्व दोषों का जन्म एकमात्र स्वरूप स्खलन से ही होता है, स्वरूप से जब विचलित होता है तो दोषों का जन्म होता है, अतः स्वरूप निश्चय ही निर्दोष निर्वाण का एकमात्र साधन है। स्वरूप निष्ठा, मैं ध्रुव परमात्मा तत्व हूँ ऐसी निष्ठा ही एकमात्र सर्वदोष का निर्वाण साधन है। पर्याय में व्याप्त दोष समुदाय के साथ तत्व ज्ञान को जीवन का एक वह पहलू भी दिखाई देता है जहाँ निरंतर योग वियोग आवर्तित होते रहते हैं। पापोदय की विभीषिकाएं हो, पापोदय की विभीषिकाएं हो, मैंने विधि शिकाय मैंने भीष, अथवा पुण्योदय की इंद्रधनुष की शिकायत है, तत्व ज्ञान इस रहस्य को बारीकी से जानता है, कि यह सब उसकी सत्ता का स्पर्श ही नहीं करता। अतः पापोदय की भीषण हैरानी, पापोदय की भीषण हैरानी अथवा पुण्योदय का मधुर उन्माद, उसकी प्रज्ञा को कभी आच्छादित करने ही नहीं देती। जब अज्ञानी, ये तो ज्ञानी की स्थिति, अज्ञानी की स्थिति क्या है? जब अज्ञानी पाप एवं पुण्य का कृतदास होकर, कृतदास माने गुलाम होकर, पाप और पुण्य का गुलाम होकर पदाघातों से कंदुक माने फुटबॉल की तरह, फुटबॉल की क्या स्थिति होती है? पदाघातों से कंदुक की तरह दुर्दशाओं के चक्रों से कभी मुक्त नहीं होता, तब चैतन्य जीवी तत्व दृष्टा ऐसी हर परिस्थिति में संतुलित एवं समावस्थ रहता है। अभी अपने को सोचना है कि किस तरह से वस्तु तक पहुंचने का जो विधान है, अब इसके लिए बताइए कौन सा परिश्रम है। पर्याय भेदों को आपको नहीं देखना है, गुण भेदों को नहीं देखना है, एक परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा तत्व मैं हूँ इतना विश्वास करना, ये अनुभूति का विधान है। अब उसके अंदर में कोई कहे कि बहुत परिश्रम है तो कौन सा परिश्रम? वो स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखता, स्वभाव में बैठकर स्वभाव को नहीं देखता, प्रतिमा में बैठकर प्रतिमा को नहीं देखता, पलाटी लगाकर प्रतिमा में नहीं देखता, वो एकमात्र उसका दोष का कारण है। तत्वज्ञान गर्वन्मत भोगमय जीवन के मृणमय स्वरूप को खुली चुनौती है, ब्रह्ममय मन मृतक स्वरूप को खुली चुनौती है। चैतन्य के अस्तित्व में संदेह का, जो मिट्टी के भोगों को ही जीवन का स्वरूप मानते हैं, दे एवं भोग की वियोग चेतना में, चेतना से भट्टी में पड़े कीट की तरह जो निरंतर अतिशय वेदना से तलपते हैं, उन्हें तत्वज्ञान का संदेह रहते हैं कि समस्त भोग संग्रह एवं संग्रह भाव ठीक ऐसी ही मिथ्या कल्पना है जिसे एक बालक मधुर विष पीता हुआ हंस रहा हो। पाप को बुरा और पुण्य को अच्छा जो मानते हैं, बाबू जी ने सुबह उदाहरण दिया, प्रश्न पत्र शुक्ल सुबह को हो एक बालक मधुर विष पीता और हंस रहा हो, ऐसी परिस्थितियां है कि मैं पढ़ जाता हूँ उसको, क्योंकि प्राय इसका जो मूलभूत विषय जो है अपने ले लिया। समग्र संयोग वियोग की संततियों के संबंध में तत्वज्ञान का सुनिश्चित अभिमत है कि वे कभी भी आत्मा के पुरुषार्थ से निष्पन्न नहीं है। समग्र संयोग और वियोग की संततियों के संबंध में तत्वज्ञान का सुनिश्चित अभिमत है कि वे कभी भी आत्मा के पुरुषार्थ से निष्पन्न नहीं है, वे सभी देव साध्य है जिन्हें दृष्टि शून्य अज्ञान अपना संपादन मानता है। देव साध्य सहज होने योग्य, हवा योग्य, लेकिन अज्ञानी तो संयोग और वियोग को अपना संपादन मेरे करने से हुआ, मेरी मेहनत से हुआ, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। अरे भैया तेरी जो समझ है तुझे सही नहीं होने के बराबर परिस्थिति में रह जाए, जहाँ से तेरा अस्तित्व को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये सभी देव काव्य है जिन्हें दृष्टि शून्य अज्ञानी अपना संपादन मानता है, अतएव उसका संपूर्ण जीवन संयोगों की सुरक्षा में नष्ट हो जाता है। संयोगों की सुरक्षा, इसको मैं ठीक रखू, इसको संभाल के रखू, इसको व्यवस्थित कर दो, इसको सिखा दो, इसको समझा दो, इसको चला दो, मैं हूँ तो सब कुछ बराबर चलता है, मैं हूँगा तब पता चलेगा, पूरा का पूरा उसी के अंदर में उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जब तत्व ज्ञान इनकी सीमा में अपनी व्यवस्था का भयंकर पाप नहीं करता एवं हल्का फुल्का संरक्षित जीवन जीता है। तत्व ज्ञान कटाई के शिखरों पर उल्का की तरह गिरता है, उसका उदय होते ही विभिन्न पापाचारों के वे रूप जो युग के साथ बदलते रहते हैं, जिनसे व्यक्ति के चरम पतन की समाप्ति की व्यापक चेतना भी अभिशप्त एवं आहत होती है, पर तत्व ज्ञान के उदय में प्रयत्न के बिना ही अनायास समाप्त होते हैं। जहाँ तत्व ज्ञान का उदय हुआ, अपने आप ही बिना ही प्रयत्न अनायास समाप्त होते हैं। हत्याएं, लूटपाट, काला बाजार एवं रिश्वत जैसे राष्ट्रीय पाप एवं दहेज जैसा सामाजिक कुष्ठ जो चिकित्सा के साथ बढ़ता ही जाता है, तत्व ज्ञान के उदय से पूर्व ही निषेध हो जाते हैं, क्योंकि विशुद्ध मानस भूमि में ही तत्व ज्ञान का जन्म होता है। अतः पाप के असंख्य रूपों का प्रहारक तत्व ज्ञान ही लोक शांति का सुनिश्चित विधाता है। एक तत्व ज्ञान समझ में आया तो सुधात्मा समझ में आ गया, तत्वों का भेद से भी निकल आया, पर्यायों का भेद से भी निकल आया, गुण भेदों से भी निकल आया। उसको तो जगत के अंदर में सब कुछ भगवान आत्मा के अलावा कुछ दिखेगा ही, जब सब जगह भगवान आत्मा दिखेगा तो कौन सा अनुति, कौन सा अनाचार, कौन सा पापाचार उसके जीवन के अंदर में खराब है, कौन सा लुटपाट उसके जीवन में। नीति के बिना तो चल ही नहीं सकता, प्रमाणिकता अनस्थी उसके कण कण के अंदर में बैठती रहती है। पापमय जीवन उसका समाप्त हो जाता है जब भगवान आत्मा अंतरंग में दिखे और बहिरंग में भी भगवान आत्मा दिखे, तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध तो वहीं से होता है। जिसको पर्याय नहीं दिखती, गुणभेद नहीं दिखते, उसने इस प्रकार सचमुच तत्व ज्ञान चरम पतन से चरम उत्कर्ष तक, चरम पतन से चरम उत्कर्ष तक ले जाने वाली जीवन की खुली पुस्तक है। जिसने तत्व ज्ञान को जीवन में अपनाया उसको सुधात्मा तक पहुंचना एकदम सरल है। यह मत कहे कि आत्मा की अनुभूति कठिन है, आत्मा की अनुभूति कठिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार गुरुदेव से यह प्रश्न पूछा गया कि शायद कोई पण जीव ने आत्मा का अनुभव खाए, किसी भी जीव को आत्मा की अनुभूति हो, और अनुभूति के पश्चात जब विकल्प में आता है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है या पहला कौन सा विकल्प आता है। गुरुदेव श्री का उत्तर यह था कि आत्मा की अनुभूति अपनी सरल है तो अनंत काल संसार में गए होते नहीं। कितनी सरलता से आत्मा की अनुभूति होती है, जो अनुभूति के लिए प्रयत्न करता है उसको अनुभूति नहीं होती है, और अनुभव की मूर्ति मैं हूँ ऐसे अभिप्राय के अंदर में अनुभव हुए बिना नहीं रहता। उसको खुद को आपसे ये होता है कि अनंत काल संसार में रह सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं होता। मैं ध्रुव तत्व हूँ इसके विश्वास में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का विषय जो प्रथम पाठ है वो अपन का काम से चलेगा। सही में सम्यक दर्शन और उसका विषय एक बार समझ में आ जाए तो ध्यान दर्शन जैसा विश्व दर्शन कोई है ही नहीं, इसकी अनुभूति जैसी सरलता कहीं पर है ही नहीं, ये बात समझ में आए बिना नहीं रहेगा। तो इस समय में पर्याय को कुछ करना नहीं है, करना उसको बनना है। और मरने जैसी तकलीफ होती है उसको जहां करने की बात, अनुभव करना और भी मरना है। कर्ता स्वभाव के जोर में कर्ता कर्म का अनन्यपना हुए बिना नहीं रहता, ऐसा अद्भुत अलौकिक विधान जैन दर्शन में पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से, ज्ञानी धर्मात्माओं के माध्यम से, सरलता से, सहजता से, सभी के परिणाम में सहज मात्रा में जन्म हो, इसी मंगल होने से।